कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों हम पुराने नियम की पुस्तक शमूएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने देखा था कि इसराइल परमेश्वर के पास आकर अपने पापों का प्रायश्चित करता है और पलिस्तियों पर विजयी होता है और इस बात की गवाही में कि परमेश्वर ने उनका साथ दिया पत्थर खड़ा करता है और उसका नाम एबनेजर रखा जाता है। शमूएल ने चूक की और अपने पुत्रों को न्यायी बनाया और वे सांसारिक मनुष्य थे, अतः वे परमेश्वर का भय नहीं मानते थे और वे इसराइल को राजा मांगने का बहाना मिल गया। परमेश्वर यद्यपि प्रसन्न नहीं था, उसने उन्हें राजा देने का विचार किया। अब राजा यदि उन्हें कष्ट दे और वे परमेश्वर को पुकारे तो वह नहीं सुनेगा। उन्हें राजा देने के बाद भी परमेश्वर के प्रवक्ता उसके भविष्यवक्ता ही होंगे, चाहे राजा उन्हें स्वीकार करे या न करे। मित्रों, आज हम देखेंगे कि शाऊल का राजा बनाया जाना। अध्याय 9 से पहले शमूएल की पुस्तक का दूसरा मुख्य भाग आरंभ होता है। पहले भाग का मुख्य नायक शमूएल था, अब शाऊल पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। शाऊल वह विचित्र मनुष्य है जिसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। बिलाम की नाई शाऊल को भी समझना कठिन है। पुराना नियम और नया नियम दोनों ही में कुछ ऐसे विचित्र मनुष्य हैं जो धर्म शास्त्र में आधे अंधकार में पाए जाते हैं और वे प्रकाश में भी आते हैं, परंतु सुअर की नाई अपनी ही छाया को देखकर फिर अंधकार में चले जाते हैं। जब हम शाऊल से पहली भेंट करेंगे तब वह राजा नहीं होगा और सच तो यह है कि वह शाब्दिक अर्थ में राजा था ही नहीं। तो आइए हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहला शमूएल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबियेल का पुत्र था। वह एक बिन्यामिनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कीश शाऊल का पिता था और बिन्यामिनी था। याकूब के पुत्रों का इतिहास यह था कि बिन्यामिन सबसे छोटा पुत्र था और पिता का सबसे अति प्रिय था। उसके जन्म के समय उसकी माता की मृत्यु हो गई थी और मरते समय उसने अपने इस पुत्र का नाम बिनोनी रखा, अर्थात मेरे दुख का पुत्र। परंतु जब याकूब ने उसे देखा तो कहा, नहीं, वह मेरे दाहिने हाथ का पुत्र होगा, और उसने उसका नाम बिन्यामिन रखा। मित्रों, बिन्यामिन पिता का अति प्रिय था और भाइयों की सुरक्षा में रहता था। हम न्यायों की पुस्तक में देखते हैं कि यह गोत्र लगभग समाप्त हो गया था क्योंकि उन्होंने घोर पाप किया था, और इसी गोत्र से इसराइल का पहला राजा निकलता है। पहला शमूएल 9 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इसराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते थे। अब शाऊल देखने में रूपवान था और शरीर के अनुसार राजा दिखता भी था, परंतु वह एक अभिनेता था जिसने अभिनय ही किया। मन के अनुसार वह राजा नहीं था। मनुष्य बाहरी रूप देखकर राजा चुनता है, उसके गुण देखकर नहीं, परंतु परमेश्वर मनुष्य के गुण को देखता है। मेरे मित्रों, आज भी यह बाहरी रूप देखा जाता है। हमारा सबसे बड़ा बैरी टेलीविजन है। जिसकी टेलीविजन छवि अच्छी है वही नेता है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य के रूप रंग और बातों पर ध्यान देते हैं, उसके गुणों पर नहीं। काश हमारे पास टीवी के स्थान पर एक्सरे होता कि मनुष्य का वास्तविक चरित्र को हम देख पाते। मित्रों, इसराइल को राजा चाहिए था और उन्हें शाऊल अच्छा लगा। वह रूपवान था, लंबा चौड़ा था और आकर्षक भी था। उससे अधिक राजसी और कोई नहीं दिखता था। वह टीवी और सिनेमा सितारा बन सकता था। यूं कहें, वह भूमिका के अनुरूप दिखता भी था और भूमिका निभा भी सकता था। परंतु समस्या यह थी कि उसका मन राजा के योग्य नहीं था। हम पहला शमूएल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि परमेश्वर विनोदी है। आप इस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह धर्म शास्त्र में अनेक स्थानों में प्रकट है। शाऊल अपने पिता के गधों की खोज में गया हुआ है और इसराइल के गधे राजा की खोज में है। उनकी भेंट होगी मेरे मित्रों, और वे भेंट भी करते हैं, और ऐसे ही स्थिति को देखकर परमेश्वर हंसता होगा कि मानव जाति पर यह कैसा टीका है। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 9 अध्याय उसके 5 पद। लिखा है, जब वे सूप नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल और उसके सेवक सब जगह अपने गधे ढूंढकर थक गए, परंतु उन्हें गधे नहीं मिले। अंत में शाऊल ने कहा, अब घर लौट चलो, अन्यथा हम भी भटक जाएंगे और हमारे लिए किसी को भेजा जाएगा कि वह हमें भी खोजे। तब हम आगे देखते हैं पहला शमूएल 9 अध्याय उसके 6-8 पद में, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए कि वह किधर जाए। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले, देख हमारे थैलियों में की रोटी चूक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें, हमारे पास क्या है। सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी की है जो हमारे लिए सहायक है। पहला शमूएल 9:9 में आगे देखते हैं, पूर्व काल में तो इसराइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने को जाता था तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। मित्रों, यहाँ नामों में बदलाव आया है। वे जो मृतकों की आत्माओं को साधते हैं उन्हें दर्शी कहा जाता था, अतः परमेश्वर ने अपने दासों के लिए एक अलग नाम भविष्यद्वक्ता रखा। इस प्रकार शमूएल भविष्यद्वक्ताओं में पहला हुआ, यद्यपि मूसा को भी भविष्यवक्ता कहा गया है। शमूएल भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में प्रथम था। शमूएल ही निस्संदेह हुआ व्यक्ति था जिसके बारे में शाऊल और उसके साथी चर्चा कर रहे थे। तब हम पहला शमूएल 9:14 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था। मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं है कि शमूएल ने शाऊल और उसके साथियों का सामना किया, परंतु यह कि उनसे भेंट की। पहला शमूएल 9:16 में लिखा है कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इसराइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर अनेक बार हमारी याचना स्वीकार कर लेता है, चाहे वह हमारे लिए सर्वोचित ना भी हो। जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं तब वह हमारे लिए भी ऐसा ही करता है जैसा उसने इसराइल के लिए किया। वह हमारी मांग पूरी कर देता है। इसराइल जब जंगल में था तब वे मांस खाने की लालसा करने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें मांस दिया, परंतु उसका प्राण सुखा दिया। यही कारण है कि हमारी प्रार्थना मसीह के नाम में होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह परमेश्वर की इच्छा में हो और उसके महिमान्वयन के लिए हो। हमारी सब प्रार्थनाएं इसी एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित होनी चाहिए। कई बार हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं जो उचित नहीं है। हम पहला शमूएल 9:17 में पढ़ते हैं, फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उनकी याचना स्वीकार करके उन्हें एक राजा दे दिया। शाऊल के व्यक्तित्व से शमूएल भी प्रभावित हुआ था और हमें पता चलेगा कि शमूएल उसका बहुत सम्मान करता था, परंतु पछताया कि उसने अच्छा नहीं किया। पहला शमूएल 9:18-20 में आगे लिखा है, तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा, और तेरी गदहियां जो 3 दिन हुई खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई, और इसराइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इसराइल को ऐसा मनुष्य दिया जैसा वे चाहते थे, परंतु शाऊल परमेश्वर की पसंद का व्यक्ति नहीं था। जब शाऊल इसराइल में निकलता था तब वे देखते थे कि वह लंबा चौड़ा और रूपवान था और राजा के समान दिखता था। जब उन्होंने राजा मांगा तो परमेश्वर ने उनकी मांग पूरी की। पहला शमूएल 9:21 में लिखा है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामिनी अर्थात सब इसराइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामिनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? मित्रों, इस पद में हम देखते हैं कि शाऊल बहुत कुछ गिदोन का सा प्रतीत होता है। वह बड़ा ही दीन दिखाई देता है। गिदोन ने कहा था न्यायों की पुस्तक 6:15 में, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। मेरे मित्रों, उसके कहने का अर्थ था, मुझसे तुच्छ और कोई नहीं है। गिदोन सच कह रहा था, वह भयभीत था और कायर भी था, अर्थात डरपोक था। इसराइल युद्ध में था और संख्या में अपने शत्रु से बहुत कम था। शाऊल को तो डरने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वे युद्ध में नहीं थे। वह तो अपने पिता के भटके हुए गधों को खोज रहा था जो मिल गए थे। उसका काम पूरा हो गया था, और कहने की बात यह है कि उसकी इन बातों का कोई कारण ही नहीं था। मेरा अपना विचार यह है कि यह उसकी दीनता का स्वांग था। मेरे विचार में शाऊल के मन में यह एक अहंकार था कि वह राजा बनने के योग्य है। पहला शमूएल 9 अध्याय उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठे में पहुंचाकर नेवताहारी को, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। शमूएल ने वृद्धों को एकत्र किया है। तब हम पहला शमूएल 9 अध्याय के 23 से 27 पद में पढ़ते हैं, फिर शमूएल ने रसोई से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोई ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे रख दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक, जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया है, रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए, और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। बिहान को वे तड़के उठे, और पह फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा, और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए, और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। मेरे मित्रों, ये सब औपचारिकताएं थी। शाऊल ने शमूएल के साथ भोजन किया और उन्होंने सभा की। तब हम आगे देखते हैं शाऊल का राज्याभिषेक। इसे हम पहले शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय में पाते हैं। तो आइए हम आगे के अध्याय में जाएं और पढ़ें पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 1 पद। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल शाऊल का राज्याभिषेक करके उसे चूमता है, और संभवतः यह उसका व्यक्तिगत प्रेम प्रदर्शन था। पहला शमूएल 10 अध्याय के 2 पद में लिखा है, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसह में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है, और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। मेरे मित्रों, जहां तक कीश का प्रश्न है, उसने सोचा कि उसका पुत्र छिन गया, परंतु शाऊल गंभीर वार्ता में व्यस्त था। शमूएल ने उसे राहेल की कब्र के निकट अभिषेक किया था, जो बेतलहम के निकट बिन्यामीन के क्षेत्र में थी। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 10 अध्याय के 5 पद में, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे, और वे नबुवत करते होंगे। उसे यह भी कहा गया कि घर लौटते समय शाऊल को वे लोग मिलेंगे, अर्थात नबुवत करने वाले। तब हम आगे देखते हैं पहला शमूएल 10 अध्याय के 6 पद में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फिर से एक प्रश्न यह उठता है, क्या शाऊल का मन परिवर्तित हो गया था? यह कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। मैं विश्वास नहीं करूंगा कि उसका मन परिवर्तन हो गया। यदि आप मुझे शाऊल के साथ पक्षपातकर्ता समझे, तो मेरे पास इसका उत्तर है। अब तक हमने जो शाऊल को पढ़ा है वह नहीं, परंतु अब जो पढ़ेंगे उससे मुझे विश्वास होता है कि वह उसका सच्चा मन परिवर्तन नहीं था। अब कोई कहे, परंतु परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर उतरा और वह एक भिन्न मनुष्य हो गया था। जी हाँ, परंतु वहां यह नहीं लिखा है कि वह एक नया मनुष्य हो गया था। क्या परमेश्वर का आत्मा विलाम पर नहीं उतरा था? हमारे पास तो उसके मन परिवर्तन का प्रमाण नहीं है। आप यहूदा के बारे में क्या कहेंगे? प्रभु ने बारहों को भेजा था और लिखा कि उन्होंने चमत्कार किए। क्या यहूदा ने भी चमत्कार किए थे? निश्चय ही हाँ। तो क्या आप कहेंगे कि उसका मन परिवर्तन हो गया था? अतः हम यहाँ शाऊल के विषय कोई भी अंतिम निर्णय लेने से रुके, जबकि मैंने तो यह निर्णय ले लिया है। पहला शाऊल 10 अध्याय के 9 पद में लिखा है, ज्यों ही उसने शाऊल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। मेरे मित्रों, जब शाऊल वहां से चला तो शाऊल ने उसे जाते देख सोचा, वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। भविष्यद्वक्ता भी तो गलत हो सकता है। भविष्यद्वक्ता नातान भी तो गलत था जब उसने दाऊद से कहा था कि वह परमेश्वर के लिए भवन बनवाए। परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा और नातान ने अपनी भूल सुधारी। शाऊल को शाऊल के विषय में भ्रम हुआ था। शाऊल को देखकर उसने केवल एक लंबा चौड़ा आकर्षक मनुष्य देखा था। वह खिलाड़ी हो सकता था, परंतु राजा नहीं। पहला शाऊल 10 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबुवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबुवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ है? क्या शाऊल भी नबियों में का है? मेरे मित्रों, परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर उतरा और उसने भी भविष्यवाणी की। वे जो उसे पहले से जानते थे उन्होंने यह परिवर्तन देखा। उन्होंने प्रश्न किया, क्या शाऊल भी भविष्यद्वक्ताओं में से है? मेरे मित्रों, परमेश्वर शाऊल को अवसर प्रदान कर रहा था। परमेश्वर ने उससे कुछ बचा नहीं रखा था, परंतु वह चूक गया था। पहला शाऊल 10 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, शाऊल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया है कि गदहियां मिल गई, परंतु जो बात शाऊल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको न बताई। वह इस विषय में चुपचाप रहा, उसने कुछ भी नहीं बताया। तब हम आगे देखते हैं पहला शाऊल 10 अध्याय उसके 17 से 19 पद में, तब शाऊल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इसराइलियों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तो इसराइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल ने राजा मांगा और शाऊल को स्वीकार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे परमेश्वर से फिर विमुख हो गए थे। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि शाऊल को राजा स्वीकार करना वास्तव में उनके द्वारा परमेश्वर को त्यागना था। मेरे मित्रों, कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के भक्तों को अपने जीवन का राजा बना लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को एक किनारे कर देते हैं, जबकि हमारा प्रथम राजा प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। हम पहला शाऊल 10 अध्याय उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं, तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मंत्री के कुल के नाम पर निकली, फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वह ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। मित्रों, ध्यान दीजिए, जब समय आया कि शाऊल प्रजा के सामने शाऊल को लाए और उसका परिचय करवाए, तब वह विलोप हो गया। वह भीम का पुरुष बच्चों का सा व्यवहार कर रहा था। वह भागकर छिप गया। उन्हें उसे खोज करके लाना पड़ा। यहाँ फिर मेरे विचार में यह शालीनता का स्वांग था। उसके सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला गया था। उसे राजा होने और परमेश्वर की सेवा करने का अवसर दिया गया था, तो उसे खुलकर सामने आना था और राजा का उत्तरदायित्व भी उसे उठाना था, लेकिन वह छुप गया। हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 10 अध्याय के 24 पद में। शमूएल ने इन सब बातों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। मेरे मित्रों, परमेश्वर प्रजा की रक्षा करे, यह पुकार पहली बार की गई थी कि राजा चिरंजीव रहे। यह पुकार आज भी प्रचलित है। हम आगे पहला शमूएल 10 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया, और शमूएल ने उन सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के सामने रख दिया। इसी के आधार पर हम मानते हैं कि शमूएल ने इस पुस्तक का पहला भाग लिखा है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा हमने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है। परमेश्वर जिस व्यक्ति को चाहता है वह उसे ही नियुक्त करता है, परंतु हम में से हर एक की जिम्मेदारी यह होती है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हम आगे देखेंगे कि शाऊल राजा किस प्रकार से अपने राज्यकाल को संभालता है, क्योंकि मनुष्यों ने अर्थात इसराइलियों ने परमेश्वर को त्याग कर मनुष्य को राजा बनाना स्वीकार किया था। मेरे मित्रों, आज मेरा और आपका राजा कौन है? क्या कोई मनुष्य है, या कोई आपकी संपत्ति है, या कोई और चीज है? मित्रों, आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम इस बात को देख लें कि मेरा राजा प्रभु यीशु मसीह है, जो उद्धार करता है, जो उद्धार दे सकता है। आज वही आपका राजा होना चाहिए। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
परमेश्वर तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर। जिंदगी की राहों में साथ है तेरा, जिंदगी की राहों में साथ है तेरा। तेरे बिंद के मुझे घोर अंधेरा, आया है रंग तू एक सवेरा, आया है रंग तू एक सवेरा। धन्य है पवित्र है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। परमेश्वर।